संख्या 18 अध्याय 2 स्वराज्य के फायदे। स्वराज्य क्या है? अपने देश का पूरा पूरा इंतजाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज्य कहते हैं। जिन देशों में स्वराज्य है वहाँ की प्रजा अपने ही चुने हुए पंचों द्वारा अपने ऊपर राज करती है। वहाँ यह नहीं हो सकता कि प्रजा लगान और करों के बीच में दबी रहे और अधिकारी लोग दिनों दिन सेना बढ़ाते जाएं, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते जाएं, प्रजा भूखों मर रही हो, चारों ओर अकाल पड़ा हो और देश का अन्न दूसरे देशों को ढोया चला जाता हो, मरी हैजा आदि रोग फैल रहे हो और अधिकारी लोग उसके रोकने का उचित प्रयत्न न करके सैर सपाटे किया करते हो, गरीब मुसाफिरों को रेलगाड़ियों में बैठने की जगह न मिलती हो और अधिकारियों के वास्ते एक पूरी गाड़ी अलग खड़ी रहती हो। सारांश यह है कि अधिकारी लोग प्रजा पर उसके हित के लिए नहीं बल्कि अपना प्रभुत्व जमाने और भोग विलास करने के लिए राज करते हो। जिन देशों में यह दशा होती है और प्रजा के हाथों में उसके सुधारने का कोई साधन नहीं होता वही देश पराधीन कहलाता है। और हमारा भारत इसी प्रकार के देशों में है जहाँ कर्मचारी लोग प्रजा का नमक खाकर अपने को प्रजा का सेवक नहीं उसका स्वामी समझते हैं। भारत को छोड़कर समस्त संसार में अब एक देश भी ऐसा नहीं है जहाँ की दशा इतनी खराब हो। और आजकल हमारे नेता लोग इस चिंता में पड़े हुए हैं कि इस दशा से भारत का उद्धार कैसे हो। क्या सारे संसार में हम ही सबसे नीच, सबसे मूर्ख, सबसे निर्बल हैं कि हाथ पर हाथ धरे इस दशा में पड़े रहें? हमारे पुरुषाओं में श्री रामचंद्र जैसे पराक्रमी महात्मा, श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी, महात्मा बुद्ध जैसे त्यागी, महाराज विक्रम जैसे प्रतापी महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे रणधीर, बादशाह अकबर जैसे प्रजा भक्त, गुरु वशिष्ठ जैसे आत्मदर्शी हो गए हैं। हम लोग उन्हीं की संतान हैं। क्या हम लोग में बल, बुद्धि, विद्या सर्वथा लोप हो गई है? नहीं, यह बात नहीं है। भीष्म और अर्जुन के नाम पर जान देने वाले कभी इतने बलहीन, इतने कर्महीन नहीं हो सकते। यह दिनों का फेर है जिसने हमें इस अधोगति को पहुंचा दिया है। लेकिन अब हम सचेत हो रहे हैं, हमारी निद्रा टूट रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अपने सदुपयोग और पूर्वजों के आशीर्वाद से फिर भारत को उसी उन्नत दशा में पहुंचा देंगे जहां वह था। फिर हम समस्त भूमंडल में उसका नाम उजागर कर देंगे। इसका एकमात्र साधन स्वराज्य है और भारत में प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह यथोयोग्य इस सदकार्य में अपने नेताओं की मदद करे। पृष्ठ संख्या 19 स्वराज्य के भेद। स्वराज्य के तीन भेद हैं। एक वह है जहाँ का राजा उसी देश का निवासी होता है लेकिन राज्य का सब काम अपनी ही इच्छा अनुसार करता है। प्रजा उसके इंतजाम में जरा भी दखल नहीं दे सकती, जैसे काबुल, नेपाल। दूसरा वह है जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता हो, जैसे इंग्लिस्तान, जापान। तीसरा वह है जहाँ राजा नहीं होता, उसकी जगह पर पंच लोग किसी योग्य और सर्वमान्य पुरुष को चुनकर कुछ नियत समय के लिए अपना प्रधान बना लेते हैं और वह प्रजा के चुने हुए मेंबरों की सम्मति से राज्य का सारा प्रबंध करता है, जैसे फ्रांस, अमेरिका, चीन आदि। भारत की दशा विचित्र है, वह इन तीनों भेदों में से एक में भी नहीं आता। उसकी दशा सबसे गई बीती है। न उसका राजा ही भारत का निवासी है और न वह प्रजा के चुने हुए पंचों द्वारा देश पर राज्य ही करता है। वास्तव में भारत का राजा कोई एक आदमी नहीं है बल्कि समस्त इंग्लैंड नहीं बल्कि अंग्रेज जाति उस पर राज्य करती है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में रहती हो, चाहे कनाडा में। सोचने की बात है कि जब एक लोभी राज्य समस्त देश की प्रजा को नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल सकता है तो एक पूरी जाति लोभ के वश में देश में कितना हाहाकार फैला सकती है। अकेला राजा तो प्रजा को लूटकर अपना पेट भर सकता है लेकिन किसी पराधीन देश के लिए अपने ऊपर राज करने वाली समस्त जाति का पेट भरना असंभव है। यही कारण है कि भारत की दशा इतनी हीन हो रही है। अंग्रेज जाति के व्यवसायी उसका व्यवसाय अपने हाथों में करना चाहते हैं। नौकरी पेशा करने वाले ऊंचे ऊंचे ओहदे दबाए हुए बैठे हैं। वहाँ के उद्योगी लोग यहाँ के उद्योग धंधे पर आसन जमाए हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के विद्वान लोग यहाँ की विद्या के भी अधिकारी बन गए हैं। हम इन तीन भेदों में कौन चाहते हैं, यह अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, पर इसमें अब जरा भी संदेह नहीं है कि हम वह राज्य चाहते हैं जहाँ प्रजा के चुने हुए पंचों की सलाह से सब राजकाज किया जाता है और पंचों की सम्मति के बिना शासक लोग कुछ भी नहीं कर सकते। भारत में ऐसी सभाएं हैं जहाँ प्रजा के प्रतिनिधि सरकार को सलाह देने जाते हैं। छोटे लाट साहब और बड़े लाट साहब दोनों को ही सलाह देने के लिए ऐसी सभाएं बनाई गई हैं। लेकिन एक तो इन सभाओं में जो पंच प्रजा की ओर से भेजे जाते हैं उन्हें वही लोग चुनते हैं जो या तो महाजन हैं या बड़े जमींदार या बड़े काश्तकार हैं। साधारण जनता को उनके चुनने का अधिकार नहीं है। दूसरे, इन सभाओं को केवल राय देने का अधिकार है। अधिकारियों की इच्छा है चाहे उस राय को माने या न माने, वह इन सलाहों के मानने पर मजबूर नहीं है। विदित ही है कि वास्तव में यह सभाएं केवल हाथी के दांत हैं। उनकी जात से जनता की कोई भलाई नहीं हो सकती। उन्हें न तो आमदनी और खर्च के विषय में मुंह खोलने का अधिकार है, न सेना के विषय में, न पुलिस के विषय में। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और म्युनिसिपैलिटी के मामले में उन्हें कुछ सत्ता प्राप्त है, लेकिन वह भी नाम के लिए, क्योंकि जब आमदनी और खर्च उनके अख्तियार के बाहर है तो वह शिक्षा या स्वास्थ्य रक्षा का उचित प्रबंध कैसे कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 20। जब खजाने की कुंजी शासकों के हाथों में है तो वह उनके अधीन है कि वह शिक्षा के लिए धन दे या न दे। स्वराज्यवादियों का लक्ष्य यही है और महात्मा गांधी ने साफ कह दिया है कि हमको आमदनी और खर्च और सेना संबंधी मामलों पर पूरा अख्तियार हो, यही हमारा उद्देश्य है। स्वराज्य के साधन। स्वराज्य का मुख्य साधन स्वावलंबन है, अर्थात अपने देश की सब जरूरतों को आप पूरा कर लेना है। जो प्राणी अपने खेत का अनाज खाता है, अपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनता है और अपने झगड़े बखेड़े अपनी पंचायत में चुका लेता है, उसे हम स्वाधीन कह सकते हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देश वालों के मोहताज हैं। अनेक छोटे छोटे घरेलू झगड़े चुकाने के लिए भी अदालतों का मुंह ताकते हैं। यहाँ तक कि अन्न वस्त्र के लिए भी दूसरों के अधीन है। यह हमारी पराधीनता है। इस अवस्था को दूर कर देने पर फिर हम सच्चे स्वराज्य का आनंद उठाने लगेंगे। हमारे देश में काफी कपड़ा नहीं बनता। वह कपड़ा खरीदने के लिए हमें अपने देश का अनाज, तेलहन आदि अन्य देशों के हाथ बेचना पड़ता है। अनाज के निकल जाने से देश में 12 मास अकाल की दशा बनी रहती है। महंगी से प्रजा को काफी भोजन नहीं मिलता। वह अपना उदर भरने के लिए नाना प्रकार के कुकर्म करती है। इस प्रकार पुलिस और अदालतों का जोर बढ़ता है। केवल एक कपड़े की कमी से देश के सिर कैसे कैसे बाधाएं आ पड़ती हैं। यदि हम लोग अपने तन ढाकने के लिए काफी कपड़े बना ले तो हमारे 70 करोड़ रुपए देश में रह जाए, धन धान्य की वृद्धि हो जाए। भोग विलास की चीजों के पीछे भी हम अपने देश के करोड़ों रुपए अन्य देशों की भेंट करते हैं। इस मामले में सारा अपराध पढ़े लिखे अंग्रेजी शिक्षा के भक्तों के सिर है। वह वकालत करके या नौकरी करके या अन्य रीतियों से प्रजा का धन खींच लेते हैं और उसे सिगरेट, साबुन, मोटर, शीशे के समान भांति भांति की विलास युक्त सामग्रियों की वेटी पर चढ़ा देते हैं। जब तक हम लोग अपने देश की कमाई अन्य देशों के हाथों इस प्रकार बेचते रहेंगे, हम सच्चे स्वराज्य का आनंद नहीं उठा सकते। इसीलिए निहायत जरूरी है कि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, किसी के अधीन न रहें। अगर हमारे देश में 60 लाख चरखे भी चलने लगे तो हम अपने वस्त्रों के लिए किसी अन्य देश के मोहताज न रहें, सारा देश धन और अन्य से परिपूरित हो जाए। इसी प्रकार यदि हमारे सुशिक्षित भाई लोग भोग विलास के पदार्थों को त्याग दे तो उन्हें प्रजा को ठग कर धूर्तता से छल से धन कमाने की जरूरत न रहे। हमारा राष्ट्रीय जीवन कितना सुखद और शांतिमय हो जाए, कितनी मनोहर कल्पना है। कुछ लोगों के कथनानुसार यह सुदशा काल्पनिक ही सही, मनोरम स्वप्न ही सही, आदर्श सही, पर कोई कारण नहीं कि हम उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास न करें। इस अवस्था में देश का सबसे उपकार जो हम कर सकते हैं वह चरखे चलाना है। यह केवल व्यावसायिक प्रश्न नहीं है, धार्मिक प्रश्न है। पृष्ठ संख्या 21। यह केवल दैहिक मुक्ति का नहीं, आत्मिक मुक्ति का साधन है। यह विचार मत रखो कि चरखे चलाने से तो मजूरी नहीं पड़ती, मजूरी समझकर नहीं, इस काम को अपना कर्तव्य समझकर करो। हमारा विशेष अनुरोध उन पर्दे वाली साध्वी स्त्रियों से है जिनके समय का अधिकांश गपशप या पर निंदा में कटता है। उन्हें इस समय ईश्वर ने देशोद्धार का बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है। इस पवित्र काम में उन्हें सहर्ष अपने पुरुषों को सहायता करनी चाहिए। उन्हें केवल वस्त्र दान का पुण्य ही न होगा बल्कि वह अपने देश के उन लाखों जुलाहों को काम में लगा लेंगी, उनके परिवार को दरिद्रता के चंगुल से निकाल लेंगी जो इस समय ताशे ढोल बजा कर या नेचे आदि बना कर अथवा पुतली घर में मजूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इससे भी बड़ा उपकार यह होगा कि हमारे देश से कुली प्रथा उठ जाएगी जिसके कारण आज लाखों परिवार अपने गांव घर छोड़कर शहरों की तंग और गंदी कोठरियों में अपने जीवन के दिन काट रहे हैं और नाना प्रकार की कुवासनाओं में पड़कर अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं। स्वराज्य प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओं का त्याग करना है जो हमारी आत्मा को दबाती है और उसे पराधीन परावलंबी बनाती है। अदालतें, सरकारी नौकरियां, सरकारी शिक्षा आदि हमारी आत्मा को कुचलने वाली, हमारे मन के पवित्र भावों का दमन करने वाली, हमें कौड़ी का गुलाम बनाने वाली, हमारी वासनाओं को भड़काने वाली संस्थाएं हैं। हमारे बालक वृंद बालकपन से ही सरकारी नौकरियों की आशा करने लगते हैं। उसी समय से उनकी आत्मा पराधीन होने लगती है। उन्हें परकटे पक्षी की भांति दरबे के सिवा और कुछ नहीं सूझता। चापलूसी करने की, काइयापन करने की आदत पड़ जाती है। वह अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं। सरकारी नौकरी ही उनका सर्वाधार बन जाती है। ऐसी शिक्षा पाने वाले युवकों के हृदय में देश प्रेम के उच्च भाव का उदय होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जिनकी आत्मा ही दब गई, वह स्वराज्य और स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तो हुआ शिक्षा का हाल। अदालतों का प्रभाव इससे कम प्राण घातक नहीं। वहाँ मुकदमेबाजी करने वाली जनता और उनका धन लूटने वाले वकील मुख्तार दोनों ही अपनी आत्मा को हताहत करते हैं। अगर कोई आदमी झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी का भीषण नाटक देखना चाहे तो उसे एक बार अदालत में जाना चाहिए। वहाँ ऐसे ऐसे घृणोत्पादक दृश्य देखने में आएंगे कि उसकी आंखें खुली रह जाएंगी और मानवीय दुर्बलता, दुष्टता और नीचता का विकट अनुभव हो जाएगा। कहीं गवाह तैयार किए जा रहे हैं, कहीं मुवक्किलों को उनका बयान तोते की भांति रटाया जा रहा है, कहीं काइयां मुहर्रिर मुवक्किलों से खर्च के लिए तकरार कर रहा है, कहीं कर्मचारी लोग रिश्वत के सौदे चुका रहे हैं, कहीं वकील साहब अपने मेहनताने का सौदा पटाने में मग्न है, कहीं मुख्तार देहातियों के एक दल को साथ लिए इजलासों में दौड़ते फिरते हैं और यह सब धूर्त लीला खुल्लम खुल्ला बिन किसी संकोच के होती रहती है। पृष्ठ संख्या 22। आत्मनाश का इससे करुणाजनक दृश्य कल्पना में नहीं आ सकता। वकालत को आजाद पेशा कहकर लोग इस पर गर्व करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा का यही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य समझा जाता है। हमारे विद्यालयों से उच्च उपाधियाँ प्राप्त करके लोग यही कामना लिए हुए निकलते हैं, पर वास्तव में इससे नीच और परतंत्र बनने वाला कोई दूसरा पेशा नहीं है। शिक्षक की, चिकित्सक की, सौदागर की, कारीगर की जरूरत हमेशा रहेगी, चाहे देश की राजनैतिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वकीलों की उपयोगिता अदालतों पर ही निर्भर है। आज अदालतें बंद हो जाए या पंचायतों का सर्वसाधारण में प्रचार हो जाए तो वकीलों को कोई कौड़ी को भी नहीं पूछे, टके टके मारे फिरे। अंग्रेजी राज के पहले यहाँ वकालत का नाम भी न था। अंग्रेजी राज के साथ यह पेशा भी आया और उसी राज की भांति दिनों दिन उन्नति करने लगा। यहाँ तक कि आज इनसे शिक्षित समाज पर एकाधिपत्य सा कर लिया है। सोचिए कि जिस समाज का प्रतिभाशाली भाग अपनी जीविका के लिए किसी विशेष संस्था के अधीन हो, वह स्वराज्य और आजादी के भाव का आनंद कैसे उठा सकता है। वस्तुतः हमारे वकील भाई अदालतों के गुलाम है, उन्हें कोई स्वाधीन पेशा नहीं आता, उसमें स्वावलंबन का भाव लुप्त हो गया है और उनसे समाज के उपकार की कोई आशा नहीं की जा सकती। अब रहे मुकदमेबाज लोग, उसमें प्रायः वही लोग हैं जो अपने धन या धूर्तता के बल से अन्याय को न्याय बनाना चाहते हैं। ऐसे आदमियों की आत्मा दुर्बल हो जाती है और वह अपना मतलब निकालने के लिए किसी गरीब की जायदाद हजम करने के लिए अथवा शत्रुओं से अपना वैर चुकाने के लिए तरह तरह के पाखंडे रचते हैं। जो आत्मा अनीति की शरण लेती है वह कभी स्वराज्य के योग्य नहीं हो सकती, वह सदैव कुचेष्टाओं के नीचे दबी रहती है। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सदैव दूसरों की खुशामद किया करती है, उसमें सम्मान का भाव नष्ट हो जाता है, वह पतित हो जाती है। ऐसी गिरी हुई आत्माएं स्वराज्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। उनके संकीर्ण हृदय में स्वार्थ के सिवा ऊंचे और पवित्र भाव उठते ही नहीं। वह नित्य इसी चिंता में रहती है कि किसका धन उड़ा ले, किसकी जायदाद हड़प कर जाए। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए आत्मशुद्धि, निर्भयता और सद्व्यवहार की ही उपासना करनी पड़ती है और मुकदमेबाजी को छोड़ने में हमें इस उपासना से बड़ी मदद मिलेगी। ऊपर जिन साधनों का जिक्र किया गया है वह सभी एक शब्द असहयोग के अंतर्गत आ जाते हैं और शासन प्रजा के सहयोग या सहायता के बिना नहीं चल सकता। प्रजा का धर्म है कि वह अपनी सरकार की यथा योग्य सहायता करे, धन से, बल से, बुद्धि से उनकी सेवा करे, किंतु जब शासन अनीति पर उतारू हो जाए, प्रजा को कष्ट देने लगे, उसके अधिकारों को कुचलने लगे, अपना रौब जमाने के लिए उस पर अत्याचार करने लगे, तो फिर उसका प्रजा से सहायता पाने का मोह नहीं रहता और प्रजा भी उसकी सहायता न करने में दोषी नहीं ठहराई जा सकती। भारत में इस समय ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। अधिकारी वर्ग नाना प्रकार के विधानों से प्रजा का दमन करने पर तुले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 23। कहीं सभाएं बंद की जा रही हैं, कहीं नेताओं का मुंह बंद किया जा रहा है, कहीं निहत्थी प्रजा पर गोलियां चल रही हैं, कहीं कार्यकर्ता जेल भेजे जा रहे हैं और वहां उनसे कड़ी मेहनत ली जा रही है, कहीं पंचायतों को तोड़ा और पंचों को दंड दिया जा रहा है, यहां तक कि किसी को शराब पीने से रोकने को भी जुर्म समझा जाता है। महात्मा गांधी की जय जयकार करने के लिए, खादी पहनने के लिए, चरखों का प्रचार करने के लिए सज्जनों पर तरह तरह के दोषारोपण किए जा रहे हैं। ऐसी दशा में प्रजा का कर्तव्य है कि वह सरकार को किसी प्रकार की न दे, क्योंकि अत्याचारी शासन की मदद करना अत्याचार करने से कम पाप नहीं है। सरकार की नौकरी करना अनुचित है, इसीलिए कि प्रजा पर अत्याचार करने का काम नौकरों द्वारा ही होता है। सरकारी अदालतों में जाना अनुचित है, इसीलिए कि इससे सरकार का रौब बढ़ता है और प्रजा की आत्मा दुर्बल होती है। वकालत करना अनुचित है, इसीलिए कि इससे सरकारी न्यायालयों की पुष्टि होती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनुचित है, इसीलिए कि इससे हमारे हृदय में गुलामी के भाव पुष्ट होते हैं। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि हम असहयोग इस हेतु ग्रहण नहीं करते कि इससे सरकार को हानि पहुंचे। नहीं, हम केवल इसीलिए असहयोग करते हैं कि हमारा यही वर्तमान धर्म है। सरकार की नीति का हमको जो अनुभव हुआ और हो रहा है उससे भली भांति सिद्ध हो जाता है कि स्वराज्य के बिना हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। उसकी प्राप्ति का साधन शांतिमय असहयोग है और आत्म शुद्धि, निर्भयता और सद्व्यवहार असहयोग के तीन अंग हैं। केवल असहयोग हमको स्वराज्य पद पर नहीं पहुंचा सकता। असहयोग तो केवल बाह्य साधन है, आंतरिक साधन आत्मा की पवित्रता है। अपनी आत्मा को खो देने से हम पराधीन हुए। स्वार्थ परायण ने ही हमारे गले में दासत्व की जंजीर डाली। आत्मा को पाकर ही हम स्वाधीन हो सकते हैं। स्वराज्य के फायदे। स्वराज्य के फायदे का शुमार करना ईश्वर के गुणों के गिनने के बराबर है। उसकी महिमा अपरंपार है। स्वराज्य मिलने पर देश में सुख और शांति का स्वराज्य हो जाएगा। उसी तरह जैसे कोई कैदी जेल से छूटकर सुखी होता है। उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं, सिर पर सिपाहियों की संगीने नहीं है। वह अन्न के लिए, वस्त्र के लिए किसी का मोहताज नहीं है। जब चाहे सोए, जब चाहे जागे, जब चाहे काम करे, जब चाहे आराम करे, जहाँ चाहे जाए, कोई उसका बाधक नहीं है। इस छुटकारे का आनंद उसी कैदी से पूछिए, वही उसका मजा जानता है। स्वराज्य से देश को सबसे बड़ा फायदा जो होगा वह भारतीय जीवन का पुनरुद्धार है। प्रत्येक जाति के जीवन में कोई प्रधान गुण होता है। अंग्रेज जाति का प्रधान गुण पराक्रम है, फ्रांसियों का प्रधान गुण स्वतंत्र प्रेम है। उसी भांति भारत का प्रधान गुण धर्म परायणता है। हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म है। हमारा जीवन धर्म के सूत्र में बंधा हुआ था। पृष्ठ संख्या 24। लेकिन पश्चिमी विचारों के असर से हमारे धर्म का सर्वनाश हुआ जाता है। हमारा वर्तमान धर्म मिटता जाता है। हम अपनी विद्या को भूलते जाते हैं, अपने रहन सहन रीति रिवाज से विमुख हो जाते हैं। हमारा अद्वितीय सामाजिक संगठन छिन्न भिन्न हुआ जाता है। पश्चिम की देखा देखी हम धनोपार्जन ही को जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं, संपत्ति ही को सर्वोपरि समझने लगे हैं। यही हमारा धर्म हो गया है। ज्ञान का, संतोष का, कर्तव्य पालन का, त्याग का महत्व हमारी निगाहों से उठता जाता है। हम विद्या को धर्म समझकर सीखते और सिखाते थे, चाहे वह गान विद्या हो, धनुर्विद्या हो या कोई अन्य विद्या हो। अब हम उसे धनोपार्जन के लिए सीखते और सिखाते हैं। हम में परस्पर प्रेम नहीं रहा, सहानुभूति नहीं रही। हमारी मैत्री, हमारा प्रेम, हमारी सदिच्छाएं, हमारे हृदय की उच्च वृत्तियां सभी धन इच्छा के नीचे दबती जाती हैं। सारांश यह है कि हम अपनी आत्मा को भूलते जाते हैं। स्वराज्य पाकर हम अपनी आत्मा को पा जाएंगे। हमारे धर्म का उत्थान हो जाएगा, अधर्म का अंधकार मिट जाएगा और ज्ञान भास्कर का उदय होगा। वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म का फिर राज होगा। हम फिर अपने भाग्य के विधाता हो जाएंगे। बैलों की भांति हाके न जाकर पुरुषों की भांति अपना मार्ग स्थिर करेंगे। हमको अपने संसार में अपने विचारों के प्रचार करने का, अपने आदर्शों को दिखाने का अवसर मिल जाएगा। हम किसी जाति के पिछलग्गू न बनकर संसार सभा में अपने उचित स्थान पर बैठेंगे। हमारी गणना दीनहीन परवश जातियों में न होकर उन जातियों में होने लगेगी जिनके हाथों में संसार की बागडोर है। पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मंद कर दिया है। हमारा मानसिक बल लुप्त हो गया है। हमने पिछली कई शताब्दियों से संसार के ज्ञान कोश में कुछ योग नहीं किया, कोई नई कल्पना नहीं की, विचार सागर में कोई लहर पैदा नहीं की। पश्चिम की जगमगाते हुए बिल्लौर के सामने हमारे जवाहिरात की चमक मंद पड़ गई थी। स्वराज्य हमारी बुद्धि को, हमारी विचार शक्ति को मुक्त कर देगा और संसार में उसकी आवाज सुनाई देगी। हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारी प्रतिभा बढ़ेगी और हम उन्नत और बलवान जातियों के सम्मुख बैठने के अधिकारी हो जाएंगे। हम संसार में एक नई सभ्यता, एक नए जीवन का प्रचार कर देंगे। संसार के वर्तमान धर्म प्रेम को अपने संतोषमय जीवन से लज्जित कर देंगे। स्पर्धा और प्रतिद्वंदिता को मिटाकर सहकारिता और प्रेम का सिक्का जमा देंगे। तब संसार का द्वार हमारे लिए बंद न होगा। हम अछूत, नीच, असभ्य, गवार न समझे जाएंगे। तब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लोग हमारी सूरत से घृणा न कर सकेंगे। तब फिजी और डमरा के मदांध सौदागर हमें कोड़े मार कर गुलाम न बना सकेंगे। तब हमको कुचलने के लिए, हमको गुलाम बनाए रखने के लिए तरह तरह के कठोर पाश्विक कानून न बनाए जा सकेंगे, क्योंकि तब हमारे हाथों में भी इन अत्याचारों का जवाब देने की शक्ति होगी। तब किसी को हमें नीच समझने का अधिकार न रहेगा। तब तब हमको जो जाति अपने देश में जाने से रोकेगी उसे हम भारत में पैर न रखने देंगे, उसके साथ व्यवसाय न करेंगे, उससे कोई संपर्क न रखेंगे। पृष्ठ संख्या 25। तब हमारे देश में आप ही धन धान्य की इतनी बहुलता हो जाएगी कि हमारे भाइयों को कूलियों में भर्ती होने की जरूरत ही न रहेगी। अंग्रेजी उपनिवेशों में इस समय हमारे भाइयों की जो दुर्गति हो रही है उसे देखकर किन आंखों से आंसू न निकल पड़ेंगे। जिन भारतीय मजदूरों ने अपना पसीना और रक्त बहाकर पूर्वी अफ्रीका, नेटाल, ट्रांसवाल, फिजी को चमन बनाया, जंगलों को काट कर बसाया, उन्हीं को अब वहां से निकाल देने के लिए मदांध स्वार्थांध अंग्रेज नाना प्रकार के क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। स्वराज्य पाने के बाद फिर किसका मुंह है जो हमसे ऐसा बुरा, ऐसा पैशाचिक व्यवहार कर सके। इस धार्मिक और मानसिक उन्नति के अतिरिक्त स्वराज्य से दूसरा बड़ा उपकार जो होगा वह हमारी आर्थिक सुदशा है। प्राचीन काल में भारत अत्यंत समृद्धशाली देशों में था। यहाँ तक कि अन्य देशों के लोग यहाँ के धन की उपमा देते थे। हमारे कवियों ने भी अपने काव्य ग्रंथों में नगरों के जो वर्णन किए हैं उनसे भी उसी बात की पुष्टि होती है। अब वह कंचन, वह रत्न कहाँ है? आज तो हमारा देश संसार के सबसे कंगाल देशों में है, जहाँ के निवासियों को साल में 9 महीने आधे पेट भोजन करके जीवन निर्वाह करना पड़ता है। इसका कारण कुछ तो यह है कि भूमि इतनी उर्वरा नहीं रही, लेकिन मुख्य कारण हमारी पराधीनता है। हमको लगभग 70 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कपड़े के लिए अन्य देशों को देने पड़ते हैं। लगभग 40 करोड़ रुपए अंग्रेज कर्मचारियों के पेंशन आदि के निमित्त देने पड़ते हैं। 70 करोड़ रुपए केवल सेना विभाग के भेंट हो जाते हैं। रेलों में कंपनियों को कितने ही करोड़ रुपए नफा के देने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज लोग जितना धन चाय, नील, ऊख आदि की खेती करके अन्य लोहे, कपड़े आदि के खाने कायम करके ढो ले जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। राज्य कर्मचारियों को वेतन जो यहाँ दिया जाता है वह अन्य देशों के कर्मचारियों से कहीं अधिक है। यह सब धन कहाँ से आता है? हमारी भूमि से। यही कारण है कि जमीन पर दिनों दिन लगान बढ़ता जाता है। दिनों दिन भांति भांति के कर लगाए जाते हैं कि किसी तरह यह शासन का बढ़ा हुआ खर्च पूरा पड़े। शिक्षा के लिए रुपयों का सदैव रोना रहता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन का सदैव तोड़ा रहता है, लेकिन पुलिस और सेना के लिए कभी धन की कमी नहीं रहती। स्वराज्य होने से इस दशा में बहुत कुछ सुधार होने की संभावना है। अभी विश्वस्त रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता है कि इस शासन का खर्च घटाने में सफल होंगे, लेकिन इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि कुछ न कुछ किफायत जरूर होगी। हम पुलिस की इतनी बड़ी संख्या न रखेंगे और पुलिस के उच्च अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रयत्न किया जाएगा। खर्च की सबसे बड़ी मद सेना है। हम इतनी बड़ी और इतनी महंगी सेना न रखेंगे। गोरे सिपाहियों पर बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। गोरे अफसरों को भी लंबी लंबी तनख्वाह देनी पड़ती है। इसकी जगह देशवासी ही अफसर होंगे और सिपाहियों की भी संख्या घटा दी जाएगी। देश रक्षा के लिए स्वयं सेवकों की सेना बनाई जाएगी। स्थायी सेना के कम हो जाने से खर्च में बहुत बचत हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 26। राज्य कर्मचारियों में अधिकांश इसी देश के लोग होंगे और उन्हें इतना वेतन न देना पड़ेगा। इसी मद से भी बहुत खासी बचत हो जाएगी। यह भ्रम है कि स्थायी सेना को घटा देने से अन्य जातियां हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। इस समय देश अपनी आंतरिक उन्नति के उद्योगों में लगे हुए हैं और बोल शैविंजम के भाव के कारण उन्हें अपना ही घर संभालना मुश्किल पड़ रहा है। और जिस तरह इस मत का प्रचार बढ़ रहा है उससे बहुत कम राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने की फुर्सत या हबिस रह जाएगी। बोल्शेविज्म का सुधरा हुआ जो रूप आगे बच रहेगा संभव है उसमें एक दूसरे पर आक्रमण करके उसका धन धान्य हरण करने का रिवाज ही उठ जाएगा। हम यदि किसी को न सतावेंगे तो दूसरे हमको क्यों सताने लगे? संसार से सैनिकता के उठ जाने के शुभ लक्षण जान पड़ रहे हैं। इसीलिए हमें सेना और शासन विभागों में जो बचत होगी वह स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षोन्नति में खर्च होगी। इतना करने पर बहुत संभव है कि हमारा भूमि कर इससे हल्का हो जाएगा और अन्य कर तोड़ दिए जाएं। हमारे नेता लोग भूमि कर को हल्का करने के लिए सरकार से सदा अनुरोध करते आए हैं। जब प्रबंध उनके हाथों में आ जाएगा तो वह अवश्य अपने सिद्धांत का पालन करेंगे और हमारे किसानों के सिर से लगान का भारी बोझ उतर जाएगा। हमारी अदालतों पर भी इस समय भारी व्यय होता है। न्याय इतना महंगा हो गया है कि बेचारे गरीबों के लिए वह दुर्लभ हो गया है। तब अदालतों का बहुत सा काम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा और जनता को बिना घर बार रहन किए न्याय मिल जाया करेगा। अवैतनिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देने से भी अदालतों के खर्च में कमी की जा सकेगी। जब जनता के पास धन एकत्र हो जाए तो वह उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहेगी। इस प्रकार देश की व्यवसायिक और व्यापारिक उन्नति होगी। अभी सरकार ने मालगाड़ियों के ऐसे नियम बना रखे हैं, विलायत के सौदागरों के माल भेजने के ऐसे सुभीते कर रखे हैं कि वह यहाँ सस्ता माल भेज सके। यह देश अभी कौशल और कलों से काम करने में निपुण नहीं है। इसका फल यह हो रहा है कि बाहर से सस्ती चीजों के पट जाने के कारण हम अपने शिल्प आदि को संभाल नहीं सकते। तब रेलगाड़ियाँ हमारे इंतजाम में होंगी। हम अपनी सुविधा अनुसार आने जाने वाले माल का महसूल घटा बढ़ा सकेंगे। बाहर से आने वाली सस्ती चीजों पर कड़ा कर लगाकर विदेशी माल को रोक सकेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देकर उनका प्रचार बढ़ा सकेंगे। इन थोड़े दिनों में हमारा देश किसी अन्य देश का मोहताज न रहेगा। हमारे यहाँ वह सभी जिनसे पैदा होती है या पैदा की जा सकती है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, फिर हमें किसी दूसरे देश का मोहताज क्यों रहना पड़े। यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। शिल्प और उद्योग यहाँ सदैव कृषि के नीचे ही रहेगा। अतएव हम अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े कारखाने कायम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मजदूर लोग शहर में बसने लगते हैं और नाना प्रकार की आदतों में पड़कर अपने शरीर और आत्मा दोनों का ही सर्वनाश करते हैं। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों में मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय हो रही है। हमें यही उद्योग करना चाहिए कि हमारा ग्राम्य जीवन, जो स्वास्थ्य रक्षा और आचरण की पवित्रता का पोषक है, नष्ट न होने पावे। इसीलिए हमें प्रायः उन्हीं उद्योग धंधों का प्रचार करना होगा जो कृषक लोग घर बैठकर अवकाश के समय कर सके। छोटे छोटे कारखाने अलबत्ता कस्बों में खोले जा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस व्यावसायिक नीति से हम विदेशी वस्तुओं का मुकाबला न कर सकेंगे, लेकिन जब हम कर लगाकर विदेशी वस्तुओं को रोक देंगे तो उनसे मुकाबला करने का प्रश्न ही न रह जाएगा। इसके सिवा हम तो केवल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शिल्प और कला की उन्नति चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है कि सस्ता माल बनाकर निर्बल देशों पर पटके और व्यवसाय के बहाने उन पर अधिपत्य जमाए। हम सुख और शांति से रहना चाहते हैं। किसी को सताना या दबाना नहीं चाहते। हम उतना ही कपड़ा बनाना चाहते हैं जिससे हमारी प्रजा का तन ढक जाए। मैनचेस्टर, लंकाशायर आदि की भांति दूसरे देश के गले अपना सस्ता माल नहीं मढ़ना चाहिए। इसी व्यवसायिक चढ़ा ऊपरी के कारण यूरोप की जातियों में नित्य वैमनस्य बना रहता है। एक दूसरे को शत्रु समझती है। उसका भयंकर परिणाम वह महासमर था जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ। हम इस संग्राम से दूर रहना चाहते हैं। खिलाफत का प्रश्न, जिसने संसार के समस्त मुसलमानों को बेचैन कर रखा है, बहुत कुछ इसी व्यवसायिक चढ़ा ऊपरी से संबंध रखता है। फ्रांस शाम देश को नहीं छोड़ता, इसीलिए कि वह शाम के बंदरगाहों से अपना माल अरब देश में ला सके। अंग्रेज लोग बसरा और बगदाद नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वहाँ मिट्टी के तेल की खाने हैं। इस व्यवसायिक स्वार्थपरता को छिपाने के लिए तरह तरह के नैतिक ढकोसले करते जाते हैं। और हम उस देश को छोड़ दे तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी, वहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ मरेंगे इत्यादि। कुछ सज्जनों का कहना है कि इस व्यवसायिक काम में हम संसार से अलग नहीं रह सकते। हमारा देश कोई कुटी नहीं है कि उसका द्वार बंद करके हम शांति से बैठे। यह सर्वथा सत्य है। हम भी ऐसा नहीं करना चाहते। हम अन्य देशों से ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते हैं, उनके आचार विचार से परिचित रहना चाहते हैं, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि हम अन्य देशों की व्यवसायिक पराधीनता स्वीकार करें। जर्मनी, फ्रांस आदि उन्नत देश भी अपने देश के व्यापार की रक्षा के लिए रक्षणकारी कर लगाते हैं। केवल इंग्लिस्तान अबाध वाणिज्य का पक्षपाती है, लेकिन वहाँ भी नीतिज्ञ इस नीति के विरोधी हैं और देश की वस्तुओं की रक्षा करने के लिए अन्य वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल सारे अंग्रेजी साम्राज्य के नेता लोग इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिए लंदन में जमा हुए हैं। भारत से भी माननीय श्रीनिवास शास्त्री जी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए गए हैं। जब ऐसे समुन्नत देशों का यह हाल है, तो भारत यदि अपने व्यापार की रक्षा करे तो कोई अनुचित बात नहीं है। पृष्ठ संख्या 28। रेल विभाग का प्रबंध अभी तक अंग्रेजी कंपनियों के हाथों में है। यद्यपि कई रेल की शाखाएं अब सरकार की संपत्ति हो गई है, पर सरकार ने उनका प्रबंध अपने हाथों में न लेकर कंपनियों पर ही छोड़ दिया है। इस काम के लिए वह कंपनियों को 4 रुपए 5 रुपए सैकड़ा नफा देती है। हमारे नेता सरकार से बार बार कह चुके हैं कि वह रेलों का इंतजाम स्वयं करे, किंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। इसी बात की जाँच करने के लिए अभी हाल में ही एक कमेटी बैठी थी। मालूम नहीं उसने क्या निश्चय किया। कंपनी के इंतजाम से प्रजा को जो कष्ट होता है, कंपनी प्रजा के सुख और सुविधे पर ध्यान नहीं देती, केवल अपने लाभ पर ध्यान देती है। रेल के विभागों में ऊंचे पदों पर कोई हिंदुस्तानी नियुक्त नहीं होने पाता। रेलगाड़ियों में जनता को जो कष्ट होता है, वह हम अपनी आँखों से देखते हैं। आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जनता की जेब से आता है, लेकिन अव्वल और दूसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए जहां सजी हुई गाड़ियां होती हैं, सजी हुई भोजन की गाड़ियां और ठहरने के स्थान होते हैं, वहां सर्वसाधारण को तीसरे दर्जे की गाड़ियों में भूसे की भांति भरा जाता है और वह पशुओं की तरह मुसाफिर खानों में पड़े रहते हैं। उन्हें स्टेशनों पर पानी तक नहीं मिलता। स्वराज्य रेलों का सारा प्रबंध हमारे हाथ में रख देगा और तब हम तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के सुख के लिए यथोचित विधान करेंगे। मालगाड़ियों के इंतजाम में भी हम अंग्रेज व्यापारियों के फायदे के लिए अपने देश के व्यापारियों का नुकसान न करेंगे। तब हमारे व्यापारी मालगाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टरों की खुशामद न करेंगे और न बड़ी बड़ी रिश्वत देंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार सुगमता से गाड़ी मिल जाया करेगी और माल के रुके रहने से उन्हें जो हानि होती है, वह कदापि न होने पाएगी। मादक वस्तुओं का त्याग करना स्वराज्य प्राप्ति का उपाय है। सरकार को मादक पदार्थों की बिक्री और अफीम के बनाने से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। यह अधर्म का धन है और अधर्म के धन को भोग करके कोई देश सुखी नहीं रह सकता। मादक वस्तुओं से मनुष्य की जो शारीरिक और आत्मिक हानि होती है, उसके उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इसका नतीजा खराब होता है। गरीबों की पसीने की कमाई नष्ट हो जाती है और वह दरिद्र होकर भांति भांति के दुख झेलते हैं। हर्ष की बात यह है कि जिन जातियों को नीच कहा जाता है, वह इस बुरी प्रथा को छोड़ रहे हैं, लेकिन उच्च जातियों के लोग जो शराब की जगह भांग और अफीम का सेवन करते हैं, इनके त्यागने का नाम भी नहीं लेते। उनके विचार में भांग या अफीम त्याज्य नहीं, यह उनकी भूल है। मादक वस्तुएं सभी हानिकर हैं और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम स्वयं छोड़े और यथाशक्ति दूसरों से छुड़वाएं। पृष्ठ संख्या 29। उपसंहार। स्वराज्य क्या है, उसके पाने के क्या उपाय हैं और हमारे क्या लाभ होंगे, इनका संक्षिप्त वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। हमारे देश में कांग्रेस ही वह संस्था है जो स्वराज्य संबंधी बातों का प्रचार करती है। महात्मा गांधी उस सभा के मुखिया हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि स्वराज्य के सुख भोगना चाहते हो तो चरखे चलाओ, स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करो, अदालतों को छोड़ो, पंचायतों द्वारा अपने कलहों का फैसला कराओ, नशे की चीजों को त्यागो, वकालत के निकृष्ट पेशे को छोड़ो और राष्ट्रीय शिक्षा का उचित प्रबंध करो। महात्मा गांधी देश के भक्त हैं, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। हमारी भलाई के लिए वह दिन रात हिंदुस्तान भर में दौड़ रहे हैं। यदि ऐसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नेताओं की अधीनता में हम स्वराज्य न ले सकेंगे तो फिर हमको बहुत काल तक पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे महान पुरुष संसार में बिरले ही जन्म लिया करते हैं। यह समझना चाहिए कि परमात्मा ने उन्हें भारत का उद्धार करने के लिए अवतरित किया है, और यदि हम उनकी आज्ञा न माने तो हमारा परम दुर्भाग्य है। हम सबको, चाहे विद्यार्थी हो या सौदागर, ब्राह्मण हो या शूद्र, चाहिए कि इस पवित्र उद्योग में अपने नेताओं का हाथ बटाएं, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थपरता को कुछ दिनों के लिए भुला दें और एक दिल होकर स्वराज्य प्राप्ति के लिए उद्योग करें, खुद चरखे चलाएं और अपनी घरवालियों से चलवाएं, क्योंकि इस समय यह आपत्ति धर्म है, इससे मुंह न मोड़ना चाहिए। अगर घर पीछे एक छटाक सूत भी रोज निकलने लगे तो देश का बड़ा कल्याण हो, और एक छटाक सूत काटने में घंटे से ज्यादा समय नहीं लग सकता। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें सद्बुद्धि दे और इस उच्च और पवित्र काम में हमारी सहायता करे।